नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में झांक रहे हैं जिनकी कहानी दो दुनियाओं को जोड़ने की कहानी है।
हाँ,
एक अमेरिकी लेखिका जिनका जन्म तो हुआ अमेरिका में, पर जिनका मन, जिनकी रूह वो चीन की मिट्टी में रची बसी थी।
बिल्कुल।
उन्होंने अपनी कलम से पूरब और पश्चिम के बीच मतलब एक समझ का पुल बनाने की कोशिश की।
आप बात करें पर्ल सिडनी स्ट्राइकर बक की, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला।
जी,
लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक लेखिका या नोबेल विजेता तक ही नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
उनकी कहानी असल में गहरी मानवीय समझ की है, संस्कृतियों के बीच संवाद की है और एक अथक सामाजिक सक्रियता की भी कहानी है। आज हम उनके जीवन और काम के उन पहलुओं को थोड़ा टटोलेंगे जिन्होंने दुनिया पर, खासकर पश्चिम की एशिया को देखने की नज़र पर एक गहरी छाप छोड़ी।
तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, पर्ल बक की इस अनोखी दुनिया को, उनके विचारों को, उनकी विरासत को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा,
ये जानना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है कि जन्म 1892 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ,
हाँ,
लेकिन दुनिया उन्हें चीन से जोड़कर ही देखती है।
सही कहा।
और हाँ, ये भी कि उन्होंने जॉन सेजस के नाम से भी लिखा, ये शायद कम लोगों को पता होगा।
हाँ, ये बात कम ही लोग जानते हैं। उनका असली महत्व अगर देखा जाए तो इसी बात में है कि उन्होंने पश्चिमी दुनिया के सामने चीन के आम लोगों को पेश किया, खासकर वहाँ के किसान, उनका रोज़मर्रा का संघर्ष, उनकी जिजीविषा, उनके सुख दुख, इसे बड़ी हमदर्दी और सच्चाई से दिखाया।
और वो भी ऐसे समय में जब पश्चिम के लिए चीन काफी हद तक एक रहस्य था, है ना?
बिल्कुल, रहस्यमयी स्टीरियोटाइप से भरा हुआ देश। बक ने उस पर्दे को हटाया, उन्होंने दिखाया कि देखो, यहाँ भी हमारी आपकी तरह के इंसान रहते हैं,
हाँ,
जिनकी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी तकलीफें हैं। उन्होंने कहानियों के जरिए समझ का एक सेतु, एक पुल बनाया।
ये समझना भी जरूरी है कि वो किस दौर में जी रही थीं, किस माहौल में उनका काम सामने आया।
हाँ, बिल्कुल।
उनका जन्म अमेरिका के गिल्डेड एज के बिल्कुल आखिर में हुआ, यानी वो दौर जब अमेरिका तेजी से बदल रहा था, औद्योगिक तरक्की।
तरक्की तो थी, पर समाज में असमानता भी बहुत थी। अमीर गरीब की खाई गहरी थी।
सही। और जिस चीन में उनका बचपन बीता वो छिंग राजवंश के ढलते दिनों का चीन था।
यानी अंदरूनी झगड़े, विदेशी ताकतों का दबाव।
हाँ, उथल पुथल का दौर। तो ये सचमुच दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव और बड़े बदलावों का वक्त था।
और जब उन्होंने लिखना शुरू किया, खासकर 1930 से 1950 के दशक में, तो दुनिया में और भी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी।
जैसे
अरे, अमेरिका में महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन, यूरोप में फासीवाद का उदय, फिर दूसरा विश्व युद्ध।
और चीन में भी तो क्रांति की आहट थी।
हाँ, चीन खुद एक बड़ी क्रांति से गुजर रहा था। और अमेरिकी साहित्य में उस वक्त विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे,
हाँ, मॉडर्निस्ट लेखक।
हाँ, आधुनिकतावादी लेखकों का बोलबाला था। उनकी शैली काफी प्रयोगात्मक थी, जटिल थी, कई बार आम पाठक के लिए थोड़ी मुश्किल भी।
लेकिन पर्ल बक ने एक अलग रास्ता चुना।
हाँ, उन्होंने जानबूझकर 19वीं सेंचुरी की यथार्थवादी, रियलिस्ट शैली अपनाई।
अच्छा,
उनकी भाषा बहुत सरल थी, सीधी, स्पष्ट, ऐसी भाषा जो कहानी को सीधे पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचा दे।
और इसका असर भी हुआ, आम पाठकों ने इसे हाथों हाथ लिया, उनकी किताबें बेस्टसेलर बनी।
बिल्कुल, लेकिन मजे की बात यह है कि कई अकादमिक आलोचक उन्होंने इसी सादगी की वजह से उनके काम को कम आका, उन्हें साहित्यिक नहीं माना।
ये तो खैर अक्सर होता है, जो चीज लोकप्रिय हो जाती है उसे बौद्धिक जगत कई बार शक की निगाह से देखता है। लेकिन ये सादगी शायद उनकी ताकत भी थी, है ना? क्योंकि इसी वजह से वो उस एशिया की कहानी पश्चिम तक पहुंचा पाई,
हाँ,
जिसके बारे में पश्चिम में उत्सुकता तो बढ़ रही थी पर समझ शायद उतनी नहीं थी।
सही कहा। एशिया वैश्विक राजनीति के मंच पर आ रहा था और बक ने उसे एक मानवीय चेहरा दिया।
उनके जीवन की शुरुआती देखें तो वहीं से इस दोहरी दुनिया की नींव पड़ जाती है।
हाँ, जन्म अमेरिका में, पर कुछ ही महीनों बाद माता पिता के साथ चीन चली गई।
उनके माता पिता मिशनरी थे।
जी, प्रेस्बिटेरियन मिशनरी, एब्सलोम और कैरोलिन सिडन स्ट्राइकर, ईसाई धर्म के प्रचारक। तो उनका बचपन चीन के जिनजियांग शहर में बीता।
तो घर के अंदर का माहौल तो पूरी तरह पश्चिमी रहा होगा, अंग्रेजी, बाइबल, डिकेंस।
बिल्कुल, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी।
अच्छा,
वहां उनकी शिक्षा एक कन्फ्यूशियस विद्वान श्री कुंग की देखरेख में हुई। उन्होंने उनसे चीनी भाषा सीखी, वहां के रीति रिवाज सीखे, दर्शन सीखा।
वाह।
उन्होंने खुद इस अनुभव को दोहरी दुनिया कहा, मतलब वो एक ही साथ दो संस्कृतियों का हिस्सा थीं।
और बचपन में ही उन्होंने बड़े राजनीतिक उछल पुथल भी देखे, जैसे बॉक्सर विद्रोह।
हाँ, बॉक्सर विद्रोह 1900 जैसी घटना उन्होंने करीब से देखी। ये चीन में विदेशियों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन था, तो उन्हें बचपन में ही असांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक अस्थिरता का सीधा अनुभव मिल गया था।
ये तो सचमुच एक असाधारण परवरिश थी।
फिर
वो पढ़ने के लिए अमेरिका आईं। वर्जीनिया के रैंडोल्फ मेकॉन महिला कॉलेज गईं, पर कहते हैं कि उन्हें वहां अपने ही देश में अजनबी जैसा लगा।
हाँ, उनका मन चीन में ही रमावा था।
तो 1914 में वो चीन लौट गईं।
जी, और 1917 में उनकी शादी हुई जॉन लॉसिंग बक से, जो एक कृषि अर्थशास्त्री थे।
अच्छा।
शादी के बाद वो चीन के ग्रामीण अनहुई प्रांत में रहीं, और यही अनुभव
उनकी सबसे मशहूर किताब द गुड अर्थ का आधार बना।
बिल्कुल, पर उनका निजी जीवन भी आसान नहीं था।
हाँ, उनकी बेटी कैरोल।
हाँ, बेटी कैरोल का जन्म एक गंभीर विकासात्मक विकलांगता के साथ हुआ, फिनिलकेटोन्यूरिया, जिसे PKU कहते हैं। ये एक जन्मजात स्थिति है जो मानसिक विकास पर गहरा असर डालती है।
ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा रहा होगा।
बहुत बड़ा। और फिर 1927 में नानकिंग घटना हुई। नानकिंग शहर में विदेशी नागरिकों पर बड़ा हमला हुआ था,
और उनका परिवार उसमें फंस गया था।
हाँ, वो और उनका परिवार मुश्किल से बचे थे। तो ये सब अनुभव, व्यक्तिगत दुख, राजनीतिक खतरे, सांस्कृतिक टकराव, इन सब ने मिलकर उन्हें लिखने की प्रेरणा दी। शायद अपनी भावनाओं को, अपनी समझ को कागज पर उतारने का एक जरिया दिया।
और फिर 1930 में उनका पहला उपन्यास आया, ईस्ट विंड वेस्ट विंड। यहीं से उनके साहित्यिक सफर की मतलब असल शुरुआत मानी जा सकती है।
हाँ, और यहीं से उनका वो योगदान शुरू होता है जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है, एक सांस्कृतिक अनुवादक का।
सांस्कृतिक अनुवादक।
हाँ, उन्होंने चीन को लेकर पश्चिम में जो घिसी पिटी अक्सर नकारात्मक छवियां थी ना, उन्हें चुनौती दी।
हाँ।
पहले के पश्चिमी साहित्य में चीनी किरदारों को या तो रहस्यमयी और खतरनाक दिखाते थे, या फिर मजाक का पात्र।
हाँ, स्टीरियोटाइप्स।
बिल्कुल। बक ने वांगलुंग जैसे किरदार गढ़े, जटिल किरदार जिनमें अच्छाइयां भी थीं, बुराइयां भी थीं, जो सपने देखते थे, गलतियां करते थे, यानी हार्ड मास के इंसान।
और इसी वजह से दुनिया भर के पाठक उनसे जुड़ पाए, उनकी कहानी में अपनी कहानी देख पाए।
सही। उनकी लिखने की शैली ने भी इसमें मदद की, जैसा आपने कहा, सरल थी, सीधी थी।
हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि उसमें किंग जेम्स बाइबल की लय है और चीनी लोक कथाओं की सी सादगी है। ये बात दिलचस्प है कि जिस सादगी की आलोचना हुई, वही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसे पारदर्शी गद्य कह सकते हैं शायद, मतलब ऐसी लिखाई जो खुद पीछे हट जाती है ताकि पाठक सीधे कहानी और किरदारों से जुड़ सके।
निश्चित रूप से। और उनके विषय भी ऐसे थे जो किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं थे, वो सार्वभौमिक थे।
जैसे?
जैसे जमीन के साथ इंसान का गहरा आदिम रिश्ता, भाग्य का पहिया मतलब जीवन के उतार चढ़ाव, महिलाओं की अंदरूनी ताकत, खासकर मुश्किल हालात में उनकी सहन शक्ति, उनका लचीलापन, और कैसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव परिवारों को तोड़ते और बनाते हैं। उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं कहीं, उन्होंने साहित्य को एक आवाज दी।
किनकी आवाज?
उन लोगों की आवाज जो हाशिए पर थे, जिनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती थीं।
और महिलाओं के अनुभवों को उन्होंने जिस तरह उभारा, खासकर चीनी महिलाओं के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदें, उनकी मजबूरियां सिर्फ चीन तक सीमित नहीं हैं, दुनिया भर की औरतें उनसे जुड़ सकती हैं।
तो एक तरह से वो बहु सांस्कृतिक साहित्य की राह बनाने वालों में से थी।
हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि अमेरिकी साहित्य सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, वो दुनिया की कहानी भी कह सकता है, कहना चाहिए।
चलिए, उनकी कुछ खास रचनाओं पर थोड़ी और बात करते हैं। शुरुआत ईस्ट विंड वेस्ट विंड 1930 से हुई।
हाँ, जिसमें एक चीनी जोड़े के जरिए परंपरा और आधुनिकता का टकराव दिखाया गया। पत्नी पारंपरिक, पति पश्चिमी शिक्षा लेकर लौटा है।
और फिर 1931 में आई वो किताब जिसने इतिहास रच दिया, द गुड अर्थ।
हाँ, कालजयी रचना,
किसान वांगलुंग की कहानी, बेहद गरीबी से उठकर बड़ा जमींदार बनने तक का सफर। इसमें जमीन से रिश्ता, परिवार के अंदर की खींचतान, मेहनत, लगन, और फिर दौलत आने पर नैतिक मूल्यों का संघर्ष, इन सब का बहुत सजीव चित्रण है।
और इसी किताब ने उन्हें रातों रात दुनिया भर में मशहूर किया। 1932 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला।
जी, अमेरिका का बड़ा साहित्यिक सम्मान।
द गुड अर्थ असल में एक त्रयी या ट्रिलॉजी की पहली कड़ी थी, तीन किताबों की सीरीज जिसे हाउस ऑफ अर्थ कहा जाता है।
अच्छा, इसके बाद और भी किताबें आईं?
हाँ, इसके बाद आईं सन्स 1932 और ए हाउस डिवाइडेड 1935।
इसमें वांगलुंग के बेटों और पोतों की कहानी है।
तो कहानी आगे बढ़ती है।
हाँ, कहानी आगे बढ़ती है बदलते हुए चीन में, गृह युद्ध, क्रांति का दौर। ये किताबें दिखाती हैं कि कैसे पहली पीढ़ी की मेहनत से बनी विरासत अगली पीढ़ियों में बिखर सकती है या बदल सकती है।
अनपढ़ ग्रामीण महिला की है ये, उस पितृसत्तात्मक समाज में औरतों की चुपचाप झेली जाने वाली जिंदगी उनकी ताकत, उनके त्याग को दिखाती है।
पर ये मातृत्व का कोई रोमानी चित्रण नहीं था शायद?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्यार, बलिदान और कभी कभी क्रूरता का एक जटिल यथार्थ है।
जैसे जैसे दुनिया के हालात बदले, क्या उनके लेखन में भी बदलाव आया?
हाँ, उनका लेखन ज्यादा सीधे तौर पर राजनीतिक घटनाओं से जुड़ता गया। मिसाल के तौर पर ड्रैगन सीड 1942।
अच्छा,
ये सीधे सीधे दूसरे चीन जापान युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक शांतिप्रिय चीनी गांव पर जापानी कब्जा होता है और वहां के लोग कैसे उसका सामना और प्रतिरोध करते हैं।
इस किताब ने शायद युद्ध के दौरान चीन के प्रति अमेरिकी जनमत बनाने में भी भूमिका निभाई होगी।
हाँ, काफी भूमिका निभाई। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह की किताब जो उनके निजी जीवन से जुड़ी थी, द चाइल्ड हु नेवर ग्रू 1950। जी, ये एक बेहद ईमानदार और साहसिक संस्मरण था। उस जमाने में बौद्धिक अक्षमता, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको लेकर समाज में बहुत अज्ञानता थी, शर्मिंदगी का भाव था। इस किताब ने उस चुप्पी को तोड़ा, इस विषय पर खुली चर्चा की शुरुआत करने में मदद की।
हाँ, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने जॉन से, जिसके छद्म नाम से अमरीकी पृष्ठभूमि पर भी उपन्यास लिखे।
हाँ, जैसे द टाउन्समैन 1945। ये दिखाता है कि उनकी कलम का दायरा सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं था, हालांकि उनकी विश्वव्यापी पहचान चीन पर लिखे उनके साहित्य से ही बनी।
अगर हम उनकी तुलना उनके समय के दूसरे बड़े अमेरिकी लेखकों से करें, जैसे फॉकनर या हेमिंग्वे, तो क्या खास बातें उभरती हैं?
जैसा हमने पहले कहा, उनकी यथार्थवादी और सीधी सरल शैली इन मॉडर्निस्ट लेखकों से बिल्कुल अलग थी। जहां वो लेखक भाषा, शैली, कहानी कहने के ढंग के साथ नए नए प्रयोग कर रहे थे, चेतना के प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे,
वहीं पक एक पारंपरिक कहानीकार थी।
हाँ, उनकी प्राथमिकता थी पाठक तक कहानी को स्पष्ट रूप से पहुंचाना।
तो क्या ये कहना ठीक होगा कि उनका काम जॉन स्टीनबेक जैसे लेखकों के ज्यादा करीब था जो सामाजिक यथार्थवाद से जुड़े थे?
हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। दोनों ही आम इंसान की कहानी कह रहे थे, सामाजिक मुद्दों को उठा रहे थे।
पर बक को जो चीज बिल्कुल अलग करती है
वो है उनका चीन पर अद्वितीय फोकस। वो अमेरिकी साहित्य के मंच पर एक पूरी तरह से अलग दुनिया, एक अलग संस्कृति की कहानी कह रही थी, और वो भी अंदरूनी नजरिए से, किसी बाहरी परिवेशक की तरह नहीं।
हाँ, ये उस समय के लिए नई बात थी।
बिल्कुल नई बात।
अब बात करते हैं उनकी विरासत की।
आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? अपने जीवन काल में तो वो बहुत लोकप्रिय थी, एक साहित्यिक सितारा।
हाँ, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थी वो।
लेकिन अकादमिक दुनिया में उनकी जगह हमेशा थोड़ी थोड़ी बहस का मुद्दा रही।
क्यों? वही शैली वाला मुद्दा।
हाँ, कुछ आलोचक हमेशा उनकी शैली को सरल कहकर खारिज करते रहे। फिर 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, शीत युद्ध शुरू हुआ, तो बक ने जिस चीन का चित्रण किया था वो कुछ लोगों को पुराना लगने लगा, अप्रासंगिक लगने लगा।
और अमेरिका में मैकार्थी युग का भी असर पड़ा होगा।
हाँ, मैकार्थी युग में जब कम्युनिस्ट विरोधी माहौल जोरों पर था, तब उन पर वामपंथी विचारों से सहानुभूति रखने का संदेह भी किया गया, क्योंकि वो सामाजिक न्याय और बराबरी की बातें करती थीं।
तो क्या उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक तरह से भुला दिया गया?
पूरी तरह भुलाया तो नहीं गया, लेकिन हाँ, कई दशकों तक उन्हें एक सांस्कृतिक घटना के तौर पर ज्यादा याद किया गया बनिस्बत एक महान साहित्यिक हस्ती के।
लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, आप कह रही थी।
हाँ, हाल के कुछ सालों में उनका फिर से मूल्यांकन हो रहा है, खासकर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के विद्वान। वो अब उनकी सीमा पार पहचान, दो संस्कृतियों के बीच पुल बनाने वाली उनकी भूमिका की अहमियत को समझ रहे हैं।
ये दिलचस्प है कि समय के साथ नजरिए कैसे बदलते हैं, और नारीवादी आलोचकों ने भी उनके काम को फिर से देखना शुरू किया होगा।
बिल्कुल, नारीवादी आलोचक अब उनकी महिला केंद्रित कहानियों की ताकत को पहचान रहे हैं, कैसे उन्होंने महिलाओं के अनुभवों को केंद्र में रखा।
और उनके सामाजिक काम, गोद लेने और विकलांगता अधिकारों पर।
हाँ, गोद लेने के क्षेत्र में उनका काम खासकर अंतर जातीय बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देना और विकलांगता अधिकारों के लिए उनकी आवाज, ये सब अब अपने समय से बहुत आगे की सोच मानी जाती है।
तो एक तरह से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन तैयार की, जैसे एशियाई अमेरिकी लेखिकाओं के लिए।
हाँ, कह सकते हैं उन्होंने अमेरिकी पाठकों को एशियाई कहानियों से परिचित कराया, उनके लिए एक रुचि पैदा की। इससे बाद में एमी टैन या मैक्सीन हॉन्ग किंगस्टन जैसी लेखिकाओं के लिए मुख्यधारा में जगह बनाना शायद थोड़ा आसान हुआ।
उनका काम आज भी हमें ये याद दिलाता है कि साहित्य कैसे हमें उन लोगों से जोड़ सकता है जो हमसे मीलों दूर रहते हैं।
बिल्कुल।
उनके लेखन और भाषणों में कई ऐसी बातें हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे द गुड अर्थ का वो मशहूर वाक्य।
हाँ,
ये धरती ही इस जीवन में हमारी जनक है और यही अकेली है जो हमें कभी नहीं त्यागेगी। ये धरती ही है जो हमेशा वहां रहती है। जमीन से वो जुड़ाव कितना गहरा था।
और 1938 में नोबेल पुरस्कार लेते हुए अपने भाषण में उन्होंने अपनी दोहरी पहचान को कितनी खूबसूरती से बयान किया था।
हाँ, वो बताइएगा।
उन्होंने कहा, मैं जन्म और वंश से अमेरिकी हूँ, लेकिन मेरी पहली सचेत स्मृतियाँ चीन की हैं। मेरी पहली भाषा चीनी थी और मेरे पहले आंसू चीनी मिट्टी पर गिरे थे।
वाह, ऐसा लगता है जैसे उनका दिल वाकई दो हिस्सों में बटा था। उनका मानवतावाद भी उनके कथनों में झलकता है, जैसे ये कहना कि किसी सभ्यता की परख इस बात से होती है कि वो अपने असहाय सदस्यों की देखभाल कैसे करती है।
ये बात आज भी उतनी ही सच है और शायद उनके सामाजिक कार्यों का मूल मंत्र भी यही था।
और पूर्वाग्रहों पर उनकी वो टिप्पणी तो कमाल की है और थोड़ी चुटीली भी।
कौन सी?
पूर्वाग्रह हमारा बहुत समय बचाता है, हमें तथ्यों को जाने बिना ही राय बनाने की सुविधा मिल जाती है।
हाँ हाँ, ये दिखाती है कि वो समाज की कमियों को कितनी बारीकी से देखती थीं।
और अपने काम करने के तरीके पर भी उन्होंने एक बड़ी सीधी लेकिन गहरी बात कही थी।
क्या?
मैं मूड का इंतजार नहीं करती। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि उसे काम पर लगना है।
वाह, मतलब लिखना सिर्फ प्रेरणा का खेल नहीं बल्कि अनुशासन और मेहनत का काम था उनके लिए।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू भी हैं, जैसे ये कि वो वाकई दोहरी दुनिया में पली बढ़ी और उन्होंने मंदारिन चीनी भाषा अंग्रेजी से पहले सीखी थी।
हाँ,
और ये जॉन सेजेस वाले छद्म नाम का क्या राज था, क्यों जरूरत पड़ी उन्हें इसकी?
शायद इसलिए कि जब वो अमेरिकी पृष्ठभूमि पर लिख रही थीं, तो वो अपनी चीन वाली विशेषज्ञ की छवि से हटकर एक आम अमेरिकी उपन्यासकार के तौर पर देखी जाना चाहती थीं।
अच्छा।
या ये भी हो सकता है कि वो देखना चाहती हूँ कि क्या पाठक उनके नाम के बिना भी उनके काम को पसंद करते हैं।
उनकी बेटी कैरोल की स्थिति ने उन्हें सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बदला बल्कि उन्हें विकलांगता और मानवाधिकारों का एक मुखर पैरोकार बना दिया।
सही बात है। और इसी कड़ी में उन्होंने वेलकम हाउस नाम की संस्था की स्थापना की।
हाँ, ये क्या थी?
ये दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जातीय गोद लेने वाली एजेंसियों में से एक थी, उस जमाने में जब नस्लीय भेदभाव बहुत ज्यादा था। एशियाई मूल के या मिश्रित नस्ल के बच्चों को अमेरिकी परिवारों द्वारा गोद लेने को बढ़ावा देना, ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था।
ये जानकर हैरानी होती है कि उनके नोबेल पुरस्कार पर भी विवाद हुआ था।
हाँ, हुआ था। कुछ अमेरिकी आलोचकों का मानना था कि उन्हें ये पुरस्कार बहुत जल्दी मिल गया।
अच्छा।
हाँ, और सिर्फ द गुड अर्थ की लोकप्रियता के आधार पर मिला। उन्हें लगता था कि बक का काम उतना गहरा या साहित्यिक नहीं था जितना उनके समकालीन मॉडर्निस्ट लेखकों का।
तो ये फिर वही बहस आ गई कि अच्छा साहित्य किसे माना जाए।
हाँ, वही बहस, जो लोकप्रिय हो उसे या जो जटिल और प्रयोगात्मक हो उसे। एक और विवादास्पद बात उनकी किताबों पर बनी हॉलीवुड फिल्में रहीं।
हाँ, येलो फेस्ड कास्टिंग वाली बात।
जी, द गुड अर्थ 1937 और ड्रैगन सीड 1944 जैसी बड़ी फिल्मों में मुख्य चीनी भूमिकाएं गोरे अमेरिकी कलाकारों ने निभाई, चेहरे पर मेकअप लगाकर।
हालांकि कहा जाता है कि पलबक खुद चाहती थी कि चीनी कलाकार ही ये भूमिकाएं निभाएं।
लेकिन हॉलीवुड स्टूडियोज तैयार नहीं थे।
नहीं,
ये उस दौर की नस्लीय सोच को दिखाता है।
तो इन सब बातों से पलबक की एक बहुत ही जटिल बहुआयामी तस्वीर उभरती है।
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक पुल थी, एक मानवतावादी थी, एक एक्टिविस्ट थी।
और एक ऐसी महिला थी जो अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक सच्चाइयों से सीधे टकराने का हौसला रखती थी। पलबक की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सच्ची समाज और सहानुभूति जो है वो सरहदों, भाषाओं और संस्कृतियों के पार जा सकती है।
बिल्कुल।
उनका जीवन, उनका लेखन इस बात का सबूत है कि इंसान के बुनियादी अनुभव दुख, खुशी, संघर्ष, उम्मीद, ये सब कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज की दुनिया में जो अक्सर बटी हुई सी लगती है, ध्रुवीकृत नजर आती है,
हाँ,
जहां हम और वो की दीवारें खड़ी करना इतना आसान लगता है, क्या हमें पर्ल बग जैसे और पुल बनाने वालों की जरूरत नहीं है?
बहुत गहरा सवाल है।
कैसे आज भी साहित्य या कलाएं हमें उन लोगों को समझने में मदद कर सकती हैं जिन्हें हम अपने से बिल्कुल अलग मानते हैं, लेकिन जिनके दिलों की धड़कन शायद हमारी जैसी ही है?
पर्लस बक के जीवन और विचारों के इस ज्ञान गोष्ठी को यहीं विराम देते हैं।
उद्घोषणा। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्सत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।